الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا ومولانا محمدًا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه وبارك وسلم تسليمًا كثيرًا كثيرًا أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يا بني آدم قد أنزلنا عليكم لباسا يواري سوآتكم وريشا ولباس التقوى ذلك خير وقال تبارك وتعالى وجعل لكم سرابيل تقيكم الحر وسرابيل تقيكم بأسكم صدق الله العلي العظيم وصدق رسوله النبي الأمي الحبيب الكريم ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين میرے دوستو پردہ نشین میری محترمہ مائیں اور بہنیں امام نووی رحمۃ اللہ علیہ نے اپنی کتاب میں ایک باب قائم کیا کتاب اللباس ریاض الصالحین کا یہ باب ہے اس میں اس باب میں لباس کپڑوں کے متعلق آداب اور ہدایتیں ہیں جو اس کو بیان کیا گیا بعض لوگ کہتے ہیں کہ لباس سے متعلق شریعت کی کوئی پابندی ضروری نہیں ہے جو کہتے ہیں جو لباس چاہو پہن لو اصل میں لوگ کیا کہتے ہیں اصل میں آدمی کا باطن اچھا ہونا چاہیے اندر اچھا ہو اوپر کوئی بھی لباس ہو ظاہر جیسا بھی ہو یہ شیطانی دھوکہ ہے یہ کیا ہے شیطانی دھوکہ ہے آدمی کے ظاہر کا اثر بھی باطن پر پڑتا ہے شریعت نے صرف باطن ہی نہیں بلکہ ظاہر کا بھی حکم دیا قرآن کریم کی آیت سے پتہ چلتا ہے وَذَرُوا ظَاهِرَ الْإِثْمِ وَبَاطِنَ ظاہری اور باطنی دونوں گناہ سے بچو دیکھیے ظاہر سے متعلق بھی ہدایت باطن کے متعلق بھی ہدایت گویا روح کے متعلق بھی ہدایت دی اور جسم کے متعلق بھی ہدایت دی اور یہ کہنا کہ آدمی کا باطن اچھا ہونا چاہیے ظاہر میں جس قسم کا لباس چاہے پہن لو کوئی ضروری نہیں ہے یہ بات صحیح نہیں ہے اس لیے کہ باطن جیسا ہوتا ہے ظاہر پر اس کا اثر ہوتا ہے آدمی جس طرح اپنا ظاہر بناتا ہے باطن پر بھی اس کا اثر ہوتا ہے مولانا ادریس صاحب کانڈھیلوی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ پھر ایسا کیوں نہیں کرتے کہ مرد عورت کا لباس پہن کر آفس میں جائے یا عورت مرد کا لباس پہن کر دنیا میں نکلے شادی میں جائے کیوں نہیں کرتے ایسا وہاں کیوں آپ بدل دیتے ہیں تو جس طریقے سے ظاہر آپ اس کو پسند نہیں کرتے ہیں کہ آدمی مرد کا لباس عورت مرد کا لباس پہنے مرد عورت کا لباس پہنے اس لیے کہ اس کا اثر انسان کے روح پر بھی ہوتا ہے دل پر بھی ہوتا ہے آج دنیا میں سائنس اور نفسیات کے جتنے ماہرین ہیں ان تمام کا کہنا ہے کہ جیسا ظاہر اختیار کرو گے اس کے باطن پر اس کا فرق پڑتا ہے ظاہر جیسا ہوگا اس کے باطن پر جیسے میں نے آپ کو پہلے بھی مثال دی تھی ایک صحابی نے برابر وضو نہیں کیا تھا تو وضو نہ کرنے کا اثر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم بھی پڑا کہ آپ بھی بھول گئے आपने खुद नमाज के बाद फरमाया, तो जब दूसरे पर असर पड़ सकता है तो अपने दिल पर असर क्यों नहीं पड़ सकता? जाहिरी एतबार से आप अपनी शक्ल सूरत अगर मर्द औरत जैसी बनाएंगे या औरतें मर्दों जैसा लिबास पहनेगी, तो चंद दिन के अंदर देखोगे कि फिर मर्द औरत बन जाएगा, औरत मर्द बन जाएगा। ये कोई झूठी कहानी नहीं है, यूरोप का किस्सा है, हमने खुद पढ़ा है। अखबार में एक औरत के मुतालिक आया था कि वो अपना बाल मुंडाती थी, जैसे मर्द मुंडाता है। हमारे एक दोस्त ने वाकया सुनाया कि एक लड़का, जवान लड़का, अपनी मां और बीवी को लेकर उमरा में गया और उमरा करने के बाद उसने अपना बाल भी मुंडाया और अपनी मां का भी और अपनी बेटी का भी, और कहा कुरान में है मुहल्लिकीन रूसकुम, तुम अपने सरों को मुंडाओ उमरा के बाद। तो मुंडा दिया। भाई ये तो मर्द के लिए मुंडाना है, औरत के लिए नहीं। औरत के लिए तो चोटी के कुछ बाल काटने हैं। जाहिल लोग होते हैं वो इस किस्म का इस्तेमाल कुरान की आयत से। तो यूरोप में ऐसा हुआ, एक गोरी औरत की, उसने बाल मुंडाना शुरू किया। उसमें क्या हर्ज है, मुंडाओ जैसे मर्द मुंडाते हैं, बॉन्ड हो जाते हैं। एक जमाने तक वो बाल मुंडाती रही, गालिबन 5 या 6 साल तक, फिर उसकी दाढ़ी आना शुरू होगी। ये बिल्कुल हक है, सच बात है। उसकी दाढ़ी जैसे मर्द की आती है, इसलिए उसने मर्द की शक्ल इख्तियार की, तो उसकी दाढ़ी आना शुरू हो गई। परेशान थी। मालूम होता है कि आदमी जैसा जाहिर इख्तियार करता है उसका असर दिल पर जरूर पड़ता है, बातिन पर पड़ता है। ये कहना कि जाहिर का उसके बातिन के ऊपर कोई असर नहीं पड़ता, सिर्फ बातिन ही सच होना चाहिए, दुरुस्त होना चाहिए, जाहिर कैसा भी हो। इसकी मिसाल हमारे अकाबिरीन फरमाते बहुत अच्छी, फरमाए आप देखेंगे फ्रूट के ऊपर कोई दाग है, फ्रूट के ऊपर ऊपर कोई बिगड़ा हुआ नजर आता है, ऊपर उसकी छाल के ऊपर, तो मालूम होता है कि अंदर में बिगड़ा हुआ है, तो उसका असर कहां आया है, बाहर छाल के ऊपर आया है, या छाल का असर अंदर पहुंचता है। फरमाते हैं अगर बातिन खराब है तो उसका असर जाहिर के ऊपर दाग की शक्ल में आया। अगर जाहिर में दाग आपको नजर आ रहे हैं, मार्क नजर आ रहा है, कोई आदमी यूं कहे उसका बातिन अच्छा है, बातिन अच्छा है, ऊपर खाली खराब है, तो उसको खा ले, वो काटेगा तो बिल्कुल अंदर में तो कीड़े होंगे या बिगड़ा हुआ होगा। इसलिए जाहिर के मुतालिक ये दावा करना कि जाहिर का कोई एतबार नहीं, असल तो बातिन का एतबार है, बातिन में जो है वो ठीक होना चाहिए। जाहिर में जो आए कपड़े पहनो, मर्द भी औरत भी। तो इस्लाम ने लिबास के बारे में जो हिदायत दी है, जो लिबास बयान फरमाए हैं, उसी में इंसान को फायदा है, उसी में। इसीलिए इमाम नबी रहमतुल्लाह अलैह ने यहां किताबुल लिबास को कायम किया और 2 आयत लाए कुरान करीम की, समझाने के लिए कि लिबास भी अच्छा होना चाहिए। मर्द को मर्द का लिबास जितना और जैसा कहा है शरीयत ने, औरत को औरत का लिबास जितना और जैसा कहा है उसको इख्तियार करना चाहिए। कुरान करीम की पहली आयत, या बनी आदम, सबको कहा है, ए आदम की औलाद, कद अंज़लना अलैकुम, हमने तुम्हारे ऊपर लिबास को उतारा, यानी जमीन से रूई निकली, उस रूई से और धागे बनाए गए, धागे से लिबास बनाया गया। क्यों? अल्लाह कह रहे युवा आरी सवातिकुम, ताकि तुम्हारे सतर को छुपाए, ताकि तुम्हारे सतर को छुपा, अल्लाह खुद कह रहा है, वलिबासु तक्वा ज़ालिक खैर, और तकवे का लिबास अच्छा लिबास है, आदमी के दिल में तकवा भी। यहां पर कुरान की आयत में सवआतिकुम है, सवआतिकुम, तो सवआतिकुम का माना है सतर को छुपाना, ऐसी चीज जिसको आदमी ओपन करने से शर्म करता हो, जिसको आदमी ओपन करने से शर्म करे। आदमी का तकाजा यह है कि वो छुपाए, अगर कोई पुलिस यू का इसके सारे कपड़े उतारो तो आदमी को कितनी परेशानी होती है। इमाम अहमद बिन हंबल रहमतुल्लाह अलैह को जब कोड़े मार रहे थे पुलिस लोग, 80 कोड़े मार रहे थे, तो मार रहे थे तो उनकी ट्राउजर जो इजार जो है वो नीचे उतर रही थी, वह उनका सतर क्या है खुल रहा था। तो उन्होंने कहा, आसमान की तरफ देखा, हाथ तो बांधे हुए थे, हाथ से तो इजार ऊपर नहीं कर सकते थे, तो इजार उतर रही थी। इतने में वो आसमान की तरफ देखा, ये उनके देखने वाले उलमा ने बयान फरमाया जो वहां देख रहे थे उनकी हालत को, ऑटोमेटिकली इजार ऊपर आई और टाइट हो गई उनका सतर। गोया एक नेक साले आलिम भी पसंद नहीं करता है कि मेरा सतर खुले, मेरा सतर खुल जाए। मार पड़ती रही लेकिन सतर खुलने को पसंद नहीं किया। इसलिए उलमा लिखते हैं कि इस आयत में या बनी आदम दो चीजें बयान की, सवातिकुम और वरीशा। एक तो हमने तुम्हारे लिए सतर छुपाने के लिए लिबास उतारा है, मर्द औरत को चाहिए कि अपने सतर को छुपाए। अब मर्द का लिबास सतर क्या है, औरत का सतर क्या है, वो समझेंगे। अल्लाह ताला ने इंसानों में मर्दों के लिए औरतों में और औरतों में जिस्म के कुछ हिस्से के मुतालिक हुक्म दिया कि इसको छुपाना जरूरी है, चूंकि ये टॉपिक आमतौर पर बयान नहीं की जाती है और ये बहुत जरूरी टॉपिक है लिबास के बारे में, इसलिए मैं कुछ बात आगे बयान करना चाहता हूं। उससे पहले कुछ शुरू की बात कुरान की आयत समझाता हूं मैं आपको। अरबी जुबान में सतर छुपाने को औरत कहते हैं, ऐन वाव रा ता, औरत। जैसे हम औरत कहते हैं ना, हम अपने गुजरात में ये औरत है भाई, उर्दू में औरत कहते हैं, अरबी में भी औरत ही है औरतुन, फारसी में सतर कहते हैं, उर्दू में भी सतर कहते हैं। तो औरतुन का माना है अलमरअतु औरतुन, हदीस में औरत खुद सतर है, अलमरअतु औरतुन, सुनन तिर्मिजी की रिवायत है, उसमें लिखा है अलमरअतु औरतुन। उस औरत का क्या माना है, मेरी माए और बहने, आप लोगों को अरबी में औरत कहा जाता है और हमारी जबान में औरत कहा जाता है, थोड़ा सा जरा चेंजिंग है, वरना वर्ड तो वही है। उसका माना है छुपाना। औरत, अल्लाह के नबी फरमाते अल मरअतु औरतु, औरत छुपाने की चीज है। और क्या, उर्दू में औरत को औरत इसलिए कहते हैं कि ये छुपाने की चीज है। मर्दों के लिए सतर नाप से लेकर, नाप के ऊपर से लेकर घुटने के नीचे तक है, दोनों इमाम किया बल्कि चारों इमाम किया, नाप से लेकर घुटनों के नी के नीचे तक सतर है। याद रखो, अगर अपने शौहर या अपना बेटा घुटने से ऊपर पहने तो उसको ना कहो कि ये औरत है, सतर है, इसको छुपाना जरूरी है। जितनी बार लोगों की नजर पड़ेगी इतनी बार उसको कबीरा गुनाह होगा। जैसे फुटबॉल खेलने वालों का बिल्कुल छोटा होता है, यानी नी से ऊपर तक का पहनते हैं, दौड़ते हैं बाज मरतबा, तो फिर जितने लोग देखते हैं सबको भी गुना और दिखाने वाले को भी गुना। अगर मुसलमान है, अगर देखने वाला मुसलमान है तो उसको भी गुना है। तो मर्द के लिए नाप से लेकर घुटने के नीचे तक सतर है, औरत के लिए चेहरा, ये चेहरा जो है ना फेस और हथेली, दोनों यहां रिस के नीचे, गट्टों से नीचे, उसके अलावा चेहरे और हथेली के अलावा बाकी सारा जिस्म, चेहरे के अलावा और दोनों रिस्ट के नीचे दोनों हाथ जो है, उसके अलावा बाकी सारा जिस्म सत्र है, बाकी सारा जिस्म उसको छुपाना जरूरी। हां अगर इलाज की जरूरत हो तो फिर जरूरत के मिकदार जाहिर करना, जाहिर किया जा सकता है। तो अल्लाह ताला फरमाते हैं قد انزلنا عليكم لباسا يواري سواتكم, हमने तुम्हारे ऊपर ऐसा लिबास उतारा जो तुम्हारे सतर को छुपाता है। अब मालूम तो हो गया मर्द का सतर क्या है, औरत का सतर क्या है। सतर छुपाने में तीन चीजों की रियायत जरूरी है, सतर छुपाने में तीन चीजों की रियायत क्या है, जरूरी है, तभी सतर छुपाने को उसका सवाब मिलेगा, वरना क्योंकि सतर छुपाना फर्ज है, जैसे नमाज फर्ज है, रोजा फर्ज है, इस तरह सतर को छुपाना भी फर्ज है। ईमान के बाद सबसे पहला फरीजा और फर्ज सतर को छुपाना है, ईमान के बाद। यहां तक के तन्हाई में भी अल्लाह के हक के तौर पर अल्लाह से शर्म करती हुई अपने सतर को छुपाए। तो सतर छुपाने में तीन बातों का जानना जरूरी है। नंबर एक, मेरी माए और बहने, ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज है, जो आजकल हम भी गुनहगार होते हैं, दूसरे लोग भी गुनहगार होते हैं, देखने वाले भी। नंबर एक, लिबास छोटा ना हो, ऐसा ना हो कि जिससे पूरा सतर न छुपे। नीट पहन लिया औरत ने, जैसे कोई मर्द है पायजामा की जगह चड्डी पहन के घूम रहा है, निकर पहनकर घूम रहा है, एक ऐसा लिबास है अंडरवे पहनकर घूम रहा है, तो उसका तो सतर छुपा हुआ नहीं है, उसका सतर का हिस्सा तो खुला हुआ है। ऐसा लिबास पहनना जायज हराम है। या और क्या ऐसा लिबास कि बदन का कुछ हिस्सा खुला रहता है, मसलन बाज औरतें जब बाहर जाती है तो सर के बाल खुले हैं, हालांकि सर के बाल का छुपाना फर्ज है, ये सतर में है औरत को। इसलिए अगर नमाज की हालत में तीन मर्तबा सुभान अल्लाह पढ़े, इतनी देर अगर उसका बाल खुला रहा तो उसकी नमाज टूट जाएगी, नमाज सही नहीं है, दोबारा उसको छुपाकर पढ़नी पड़ेगी। अंदाजा करो, जब नमाज नहीं होती तो बाहर कितना बड़ा गुनाह होगा इसका। इसी तरह बाज औरतें आस्तीन तक का लिबास, जब बाहर निकलती है तो आस्तीन तक यानी एल्बो तक का लिबास, या फिर एल्बो से जरा नीचे तक, तो रिस्क के ऊपर हो गया तो इतना हिस्सा, या फिर इतना हिस्सा उसका एल्बो से नीचे तक का या जरा नीचे तक का हिस्सा तो नजर आता है, तो ये तो बहुत बड़ा गुनाह है मर्द के लिए भी औरत के लिए भी, ये जायज नहीं है। ये एक चीज हो गई कि लिबास बिल्कुल छोटा न हो, पूरा लिबास हो। मैंने हद बयान कर दी मर्द के लिए और औरत के लिए भी। नंबर दो, लिबास इतना मोटा हो कि उससे जिस्म के अंदर का हिस्सा नजर ना आए। देखो बाज मर्तबा कपड़ा इतना बारीक होता है कि उसका पेट, उसका सर, उसका शोल्डर, उसका बैक नजर आता है। इस सूरत में लिबास होने के बावजूद उसको कबीरा गुनाह होगा, पूरा लिबास पहना है लेकिन उसका बदन नजर आता है, इतना बारीक लिबास है, पतला उसका कपड़ा है, यह भी हराम है। बारीक दुपट्टा पहन लिया मिसाल के तौर पर, कि उसके बाल नजर आते हैं या बारीक कुर्ता पहन लिया। ये लेडीज प्रोग्राम में ये बातें बहुत जरूरी है। पूरा महीना फजाइल तो सुना, अब थोड़ी कड़वी बात भी सुनिए। कड़वी तो नहीं, मेरे नबी का फरमान है, कुरान का हुक्म है, इसका बयान करना जरूरी है। खादिम मैंने ये पहली बार ये बात, ये टॉपिक बयान किए, पहले कभी बयान नहीं किए। आज सुबह बैठा हुआ सोच रहा था तो फिर दिमाग में ये बात आई तो मैं इस पर थोड़ी बात बयान करूं ताकि हम लोग गुनाह से बच जाए। आगे मैं आपको हदीस सुनाऊंगा कि जहन्नम कैसे फिर उस पर जहन्नम की आग लग जाती है। तो ये दूसरी बात, पहला तो लिबास छोटा ना हो, नंबर दो बारीक ना हो। ये औरतों की बात कर रहा हूं। मर्द भी अगर नाप से लेकर घुटने तक ऐसा लिबास पहने तो उसका सतर नजर आए, बारीक कपड़े, उसके लिए भी जायज है, तीन दोनों के लिए। तीसरी बात, लिबास बहुत टाइट ना हो, मर्द भी या औरत भी, ढीला हो कि जिस्म की बनावट और बदन का फिगर नजर ना आए, ढीला होना चाहिए। ये इस आयत में अल्लाह कह रहे हैं, इसकी तफसीर में सौआतिकुम, कि हमने तुम्हारे लिए सतर छुपाने के लिबास उतारा है, उसके अंदर में ये तीन शर्तें हैं कि फिर बदन सतर में दो चीजें हैं, एक तो खाल की रंगत है, खाल जो चमड़ी है वो गोरी है या काली है, वो तो बारीक कपड़े से नजर आ जाएगा। नंबर दो उसका साइज है, यानी टाइट दोनों, ये दोनों छुपाना जरूरी है, न तो बिल्कुल बारीक कपड़ा होकर नजर आए और न तो इतना टाइट हो कि उसके बदन का उभार नजर आए, दोनों चीजें। अगर किसी ने बारीक लिबास पहन लिया तो अंदर की खाल भी नजर आएगी। सो दोनों गुना होंगे, लिबास मोटा तो है लेकिन इतना टाइट है, मोटा लिबास है कि बदन नजर नहीं आता, लेकिन टाइट इतना है कि उसके उज्व की साइज, बनावट, उभार सब नजर आता है। जैसे ऐसी पतलून पहन ली के पीछे कुला नजर आता है, बैक नजर आती है, बैक साइड उसकी नजर आती है, या इतनी टाइट इजार पहन ली कि शर्मगाह की पूरा उभार नजर आता है, या उसके चेस्ट का पूरा उभार नजर आता है, या पेट का उभार नजर आता है। ये सारी बातें इस आयत की तफसीर में लिखी है। फरमाया ये तीनों चीजें अगर होगी तो कयामत के दिन उसको नंगी औरत शुमार की जाएगी कि उसकी जिंदगी बगैर कपड़े के गुजरी है। तो नंगी औरत पर जो अजाब होगा वो इस औरत पर भी होगा। नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया ऐसी औरत पर जिस पर ये तीनों बातें जो मैंने कही, लिबास छोटा ना हो, लिबास बारीक ना हो, लिबास टाइट ना हो, ये तीनों चीजें अगर नहीं है तो वो अल्लाह के निगाह में बहुत अच्छी है, लेकिन अगर तीनों चीजों में से एक भी है तो नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने वो ऐसी औरतों पर लानत की बद्दुआ फरमाई है कि अल्लाह उस पर लानत फरमाए, अल्लाह उस पर क्या लानत फरमाए। तो ये बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज है जो यहां पर बताई गई। हदीस में आता है, मुस्लिम शरीफ की हदीस है, मुस्लिम शरीफ में इसकी वईद आई है, कासियातुन आरियातुन मुमिलातुन माइलातुन रुसुहुन्ना कास नेमतिल बुख्तिल माइला। इस हदीस मुस्लिम शरीफ की हदीस है, कासियातुन ज़ेबो ज़ीनत, बाहर जाए तो ज़ेबो ज़ीनत, नंबर एक ज़ेबो ज़ीनत करने वाली, आरियातुन और बनाव सिंगार करने वाली और अपनी चाल ढाल की वजह से, माइलातुन दूसरे को अपनी तरफ माइल करने वाली, खींचने वाली, ऐसा अंदाज जिससे लोग उसकी तरफ देखे और दो लोग उसकी तरफ माइल हो, और सर के ऊपर भार, ऐसे सर के ऊपर, सर के ब्रेन के ऊपर ऐसा बाल को बांधे जैसे ऊंट की कुहान, बुख्तिल माइला, जैसे ऐसे बाल, एक तो पीछे बांधना है, पीछे प्रॉब्लम नहीं है लेकिन सर के ऊपर ऐसे बांधना, ये है बुख्तुल माइला, जैसे ऊंट के ऊपर कुहान होती है, आगे कुहान है, हम्प जिसको कहते हैं। तो इसमें نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے بد دعا فرمائی ہے، فرمایا کہ اللہ تبارک و تعالی ایسی عورت پر رات دین لعنت اتارتے ہیں، یہ فتنے کی چیزیں ہیں، ان دروازوں کو بند کرنا چاہیے، جس کی وجہ سے خود بھی آدمی پریشان گناہ میں اور دوسروں کو بھی گناہ کی طرف مائل کرنے والی ہے۔ تو ایک تو ہو گیا ستر، وریشا نمبر دو فیشن۔ وریشا فیشن کس کو کہتے ہیں؟ آدمی صحیح لباس کے بجائے اس لباس کو پہنے جو شریعت کے اندر میں اجازت نہیں، جس کو فیشن کہتے ہیں۔ آج کل میں فیشن ہے، وہ ایک بہت مالدار لڑکا ہے، بہت مالدار، اس نے ایجار پہنی تھی، یعنی پٹلون پہنی تھی جس کو جینس کہتے ہیں، اور اس میں جگہ جگہ پھٹی ہوئی تھی۔ دیکھو بہت ساری لڑکیوں کو بھی دیکھنا، وہ جینس پہنتی لیکن پھٹی ہوئی ہے، یہاں ایک تھوڑا پھٹا ہے، یہاں پھٹا ہے، یہاں پھٹا ہے، یہاں پھٹا ہے، پھٹی ہوئی۔ یہ بات میں نے ساؤتھ افریقہ میں بیان کی تھی تو ہمارے دوست ہر وقت مجھے یاد دلاتے رہتے، یہاں پھٹا، وہاں پھٹا، یہاں پھٹا، اچھا سرنگا کے پاس نہیں پھٹا۔ تو میں نے اس کو کہا، بھائی میں نے اس کو کہا کہ او غریب کے بچے ادھر آ، میں نے اس کو کیا کہا، او غریب کے بچے، او فقیر کے بچے ادھر آ۔ تو وہ مجھے کہتا ہے میں فقیر نہیں، میرا باپ تو بہت مالدار ہے۔ میں نے کہا تیری جینس تو پھٹی ہوئی ہے، بولے فیشن ہے۔ میں کہا یہ تو فیشن ہے کہ فلاں فلاں ایکٹرز پہنتے ہیں نا، تو ہمارے آج کل کے نوجوان لڑکے لڑکیاں بھی ایسا ہی پہنتی ہے، کہ فیشن ہے۔ سمجھ میں آئی بات؟ اللہ حفاظت فرمائے اس فیشنوں سے۔ وریشا، وریشا کا معنی ہے کہ آدمی لباس کے اندر کوئی ایسی شکل اختیار کرنا کہ راحت حاصل ہو۔ وریشا کے معنی ایسا کپڑا پہننا جس سے بدن میں اچھا معلوم ہو، کہ بھائی ایک 15 پاؤنڈ کا ہے اور ایک 20 پاؤنڈ کا اچھا کپڑا ہے تو اچھا پہن لے، وریشا قرآن کہہ رہا ہے، اچھے کپڑے پہن، کوئی حرج نہیں ہے۔ ایک کپڑا ہے 10 پاؤنڈ کا، ایک 20 پاؤنڈ کا ہے، تمہیں وہ اچھا لگتا ہے اچھا پہن لے، قرآن نے کہا ہے وریشا اچھا لباس پہن۔ تو یہ مردوں کے لیے ایسی زینت اختیار کرنا جو عورتوں کے لیے خاص، عورتوں کے لیے ایسی زینت جو مردوں کے مشابہ، اس کی اجازت نہیں ہے کہ مردوں جیسی زینت میں اختیار کروں، یا مرد کہیں میں عورت جیسی زینت اختیار کروں۔ آج کل ہمارے نوجوان دیکھو کان میں ایئرنگ لگا کے، یہاں بھی ایئرنگ ہے، ناک پر بھی ہے، اور بعض لوگ تو پیٹ پر بھی ایئرنگ بناتے ہیں۔ سمجھ میں آئی بات؟ یہ سب کے سب حدیث کو سن لو، حدیث کو سن لو۔ میری مائیں اور بہنیں، چونکہ یہ اللہ کے نبی کا فرمان ہے، کہیں اللہ مجھے پوچھ نہ لے کہ تم نے کیوں بیان نہیں کیا، اس لیے میں اس کو بیان کر رہا ہوں۔ اللہ مجھے، ہماری عورتوں کو، سب عورتوں کو عمل کی توفیق نصیب فرمائے۔ اللہ کے نبی فرماتے ہیں لعن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، ابن عباس کی حدیث ہے بخاری شریف میں، رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم لعنت فرماتے ہیں، متشبہین من الرجال بالنساء والمتشبہات بالنساء من النساء بالرجال، جو عورتیں مردوں کا لباس پہنتی ہے اور جو مرد عورتوں کا لباس پہنتی ہے، ان کے اوپر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بد دعا کی ہے، لعنت کی۔ تو ایک تو یہ ہے کہ متشابہات اختیار نہ کریں، نمبر دو لباس تکبر کے لیے نہ پہنے، یعنی اتنا مہنگا پہنے کہ لوگ ہاں دیکھنا میں نے کتنا اچھا پہنا، میں نے کتنا، دل کے اندر میں تکبر ہو۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ دیکھو ایسا لباس نہ پہنو جو تمہیں غرور میں ڈالے، دھوکے میں ڈالے۔ عبداللہ بن عباس کی حدیث ہے بخاری شریف میں، قل ما شئت والبس ما شئت ما اخطأت اثنتان صرف ومخیرا، جو چاہو کھاؤ کھاؤ، پیسے دیے اللہ پاک نے، اچھا کھانا کھاؤ، اچھا کھانا بنا کے کھاؤ، جو چاہے پہنو، اللہ پاک نے اچھا لباس دیا ہے تو میں کیسے، میرا لباس پہنو، وہ حرج نہیں، کوئی حرج نہیں ہے۔ لیکن دو باتوں کا خیال کرنا، اللہ کے نبی فرماتے ہیں کھاؤ پیو لیکن دو باتوں کا خیال کرنا، یہ صحیح حدیث ہے، کتاب اللباس بخاری شریف میں ہے، صرفن و مخیلتن۔ صرفن کے معنی ہے فضول خرچی نہ کرو، کیا مطلب؟ میرے پاس
दस पंद्रह जोड़ी अच्छे कपड़े हैं तो उसको पहनो, उसको पहनो। अगर तुम इतना लाते हैं कि साल में एक बार भी पहनने का मौका नहीं मिलता तो ये फजूल खर्ची है। अल्लाह के इसका कुरान में है, फजूल खर्ची शैतान का काम है। इसका काम है शैतान का काम, शैतान कराता है। और नंबर दो, मखीलत, तकबुर ना हो। खाना आदमी खाए, आजकल क्या करते, खाना खाते हैं और कहां रखते हैं, स्टेटस पर, स्टेटस पर। दो उसमें बुराई होगी, एक तो कोई तुम्हारे ऊपर नजर डालेगा, अगरचे फोटो है खाने का लेकिन तुम पर नजर डालेगा, ऐसी नजर के कभी तुम खा ही नहीं सकोगे, और नजर हक है याद रखो। दूसरा एक तो ये है, ये तो है ही। नंबर दो कि तुम लोगों को दिखाकर यू कहना चाहते हैं, अगर कोई गरीब लोगों ने देख लिया आपके व्हाट्सएप पर या आपके ग्रुप पर, कोई गरीब लोग हैं उन्होंने देखा तो उसके दिल में परेशानी होगी कि इनके पास पैसे हैं हमारे पास नहीं है, देखो ये खाना बदला रहे हैं, ये गुरूर होगा, तकबुर होगा। और अल्लाह के नबी फरमाते हैं तुम खाना खाओ कि तुम्हारे पड़ोसी को भी तकलीफ ना हो। हमारे अकाबिरीन कभी कभी पैसे होते तो पड़ोसी को देते थे, अगर नहीं होते थे, फॉर एग्जाम्पल मैंगो खरीद लिया तो मैंगो खरीदने के बाद उसके छिलके बाहर नहीं डालते थे, जाकर चुपचाप से बिम डाल ताकि पड़ोसी की निगाह न पड़े, वरना पड़ोसी देखेंगे तो कहेंगे हमारे पास तो पैसे नहीं है मैंगो खाने के, तो उनको तकलीफ होगी। हमारे काबिरीन इतनी भी तकलीफ देना नहीं चाहते थे, इसलिए मखीलत उनका माना है गुरूर और तकब्बुर ना हो, न खाने में न कपड़ों में, ये अल्लाह को पसंद नहीं है याद रखो। एक मर्तबा नबी अकरम, हाँ बाज मर्तबा ऐसा भी होना चाहिए कि पैसे दिए हैं तो अच्छे कपड़े पहन लो। नबी अकरम साहब को देखा फता पुराना लिबास पहने हुए, लिबास फटा तो हुजूर साहब ने पूछा इधर आओ, ये हदीस त्रिमिजी शरीफ में, तुम्हारे पास माल है, यू हैव वेल्थ? उन्होंने कहा यस। पूछा कौन सा माल है, कहा ऊंट भी है, बकरियां भी है, घोड़े भी है, गुलाम भी है, सब है। फरमाया तो फिर ये कपड़े क्यों फते पुराने पहने, अल्लाह पाक ने तुम्हें माल दिया है तो माल का असर कपड़ों पर भी, यानी नेमत का असर तुम्हारे जिस्म पर जाहिर होना चाहिए, क्यों नहीं? ये फजूल खर्ची नहीं है। फजूल खर्ची तो किसको कहते हैं कि आदमी जरूरत से ज्यादा, लेकिन यहां तो माल है और इतना है कि पहनता भी नहीं, तो अपने माल को खर्च करके पहनना चाहिए। आई बात समझ के, तो तशब्बू से बचना चाहिए। बाज मरतबा हम जो ये पहनते हैं ना कि फुला एक्टर ने पहना, फुलाने ने पहना, फुलाने ने पहना, फुला हिंदू औरत पहनती तो हम भी पहनेंगे फुला, ये बहुत बुखारी शरीफ में, अबू दाऊद शरीफ में, मन तशब्बह बिकौमिन फहुवा मिन्हु, जो जिस कौम की मुशाबिर इख्तियार करेंगे कयामत के दिन उसी कौम के साथ उसको उठाया जाएगा, उसी कौम के साथ। मजूसियों की मखसूस टोपी पहन ले, ये तो फाइव वर्षों पर पहनते हैं, या हिंदुओं की कोई चीज इख्तियार कर ली, या मुशरिक का कोई रस्सी बांध ली, जिसका जो लिबास, जो चीजें तुमने अपनी जिंदगी में इख्तियार की है तो कयामत के दिन उन्हीं कौम के साथ आदमी को उठाया जाएगा। हमारे हजरत एक वाक्य सुना के खत्म कर देता हूं। हजरत मौलाना ज़करिया साहब रहमतुल्लाह, आप बेटी में एक वाक्य लिखते हैं, एक बुजुर्ग नेक आदमी थे, एक मरतबा इन हिंदू लोगों की होली का दिन होता है ना, होली, होली दिवाली, तो होली का दिन था, उस दिन वो एक दूसरे पर कलर डालते हैं, एक दूसरे को कलरिंग करते हैं यानी कलर डालते हैं, ये उनकी होली। तो ये बुजुर्ग जा रहे थे रास्ते में, पान खा रहे थे, उन्होंने रास्ते में एक मरियल टट्टू गधा देखा, सफेद गधा, मरियल टट्टू यानी जरा कमजोर था, तो मजाक करते हुए पान की एक पिचकारी, पान तो लाल होता है ना खाते है तो उसकी एक पिचकारी जो है वो गड्ढे पर डाल दी, ऐसा ठूक लिया और कहा सब लोग एक दूसरे को कलरिंग कर रहे हैं आज हिंदू लोग, तुझे कोई कलर करने वाला नहीं, चलो मैं कर देता हूं। ये नीयत करके पान खाते हुए पान की लाली जो है वो उसके ऊपर डाल दी। वो क्या है, उसके ऊपर डाल दी। इंतकाल के बाद जब उस शेख और बुजुर्ग का इंतकाल हुआ तो देखा उनके होठों के ऊपर एक छोटा सा ये सांप है, सांप होठों के ऊपर सांप है, बदन ठीक है लेकिन होठों के ऊपर एक सांप है जी, जो काट रहा है उनके लिप्स को, काट रहा है मुंह को। तो ये खाब देखने वाले ने पूछा ये सांप कैसा है, तो उन्होंने कहा ऐसा ऐसा हुआ था, एक मर्तबा मैंने हिंदू की एक मुशाबियत इख्तियार की, वो भी मजाक में, जानबूझकर नहीं, मैंने मजाक में एक घड़े पर इस तरीके से मैंने डाला लाल कलर यानी पान का, यह कह करके आज हिंदू लोग एक दूसरे को कलर कर रहे हैं। तुझे कोई कलर करने वाला नहीं, मैं करता हूं। अल्लाह पाक ने जब से मरा हूं तब से उस एक पिचकारी की वजह से अल्लाह मुझे यह अज़ाब दे रहा है। आज देखो हमारे यंगस्टर्स कितना मुशरिकीन का और यहूदियों का और नसारा का और उन लोगों का कितना ही ज्यादा उनके जैसा लिबास, उनके जैसे चलन, उनका जैसे सारी चीजें तैयार करें, जूते कपड़े चलना बोलना सब कुछ। इसलिए मुजद्दिद अल-फैसानी रहमतुल्लाह, एक और वाक्य खत्म, दो वाक्य और, हजरत शेख ने लिखा आप बेटी में कि मुजद्दिद अल-फैसानी रहमतुल्लाह एक आदमी के मुताबिक फरमाया कि उसका उठना और बैठना गैर मुस्लिम के साथ था और उसके दिल में गैर मुस्लिम की मोहब्बत होती थी। देखा, मुसलमान के साथ नहीं बैठता था, किसके साथ, उसकी कंपनी किसकी था, गैर मुस्लिम की, उसके साथ उठता बैठता था और गैरों से मोहब्बत करता था। तो इंतकाल के वक्त उसकी जबान पर कलमा ही नहीं आ रहा था। हजरत फरमाते मैंने, हजरत खुद फरमाते मैं उसके पास गया कलमा पढ़ाने के लिए, और मुजद्दिद अल-फैसानी जैसा अल्लाह वाला नेक साले, बहुत बड़ा, हर 100 साल में एक बुजुर्ग अल्लाह पैदा करता है, वो खुद गए कलमा पढ़ाने के लिए। मैंने तवज्जो की अपने दिल की उसकी तरफ तो देखा उसका दिल बिल्कुल डार्क है और वो बहुत दूर, जैसे लगता बहुत दूर आदमी अंधेरे में पड़ा हो, तो बहुत तवज्जो की लेकिन वो कलमा नहीं पढ़ सका, बगैर कलमे के दुनिया से मर गया। मालूम होता है जो मुशाबियत इख्तियार करता है सिर्फ बैठना है, गैरों के साथ बैठना और उनके साथ ही बैठना है, उठना है, कितना खतरनाक हुआ। तज़किरतुन नशीक में एक लिखा है, एक मौलाना साहब थे, इंतकाल के बाद उनको दफन किया गया, फिर किसी वजह से उनकी कब्र खोली गई, कुछ जरूरत ही खोली गई, जब कब्र खोली गई तो वो मौलवी साहब उस कब्र में नहीं थे, दफनाने के बाद कब्र खोली गई वो नहीं थे, बल ये हजरत मौलाना गंगोई साहब अपनी किताब में बयान फरमाते हैं तज़किरतुन नशीक में, ये सही वाकया है, बल्कि एक अंग्रेज औरत की बॉडी थी वहां, मौलवी साहब को दफन किया, कुछ जरूरत की वजह से कब्र खोदी तो मौलवी साहब नहीं थे वहां, तो कौन थे भाई, एक अंग्रेज इंग्लिश वुमन को यार उसकी बॉडी थी। लोगों ने ताज्जुब से पूछा ये कैसी बात है, पता चला कि वो औरत अंदर अंदर में मुसलमान थी, वो क्या थी, मुसलमान थी। तो उसके इंतकाल पर उसके मजहब वालों ने ईसाइयों के कब्रिस्तान पर दफन किया था, ईसाई क्रिश्चियन के कब्रिस्तान में, और ये मौलवी साहब कभी कभी बोला करते थे कि ईसाइयों में बहुत अच्छा है कि उनके यहां जनाबत का गुसल ही नहीं है, गुसल फर्ज हो जाता है ना, तो फर्ज गुसल वाजिब नहीं है, तो गोया ईसाइयत की इस चीज को ये मौलवी साहब पसंद करते थे और वो औरत इस्लाम को पसंद करती थी। जैसा ही इंतकाल हुआ तो क्या हुआ, अल्लाह पाक ने उस औरत की बॉडी को उस ईसाई कब्रिस्तान से इस मुसलमान की कब्रिस्तान में ले आए, और जब उस औरत की कब्र खोदी गई तो वहां से मौलवी साहब की कब्र उसके कब्रिस्तान में पहुंची थी। ये बात तज़किरतुन नशीक में, अगर कोई और बयान करता मैं इसको बिलीव ना करता, मौलाना रशीद अहमद गंगोई रहमतुल्लाह इसको बयान फरमाते हैं। इसलिए मेरी माए और बहने, बहुत जरूरी है कि अपने लिबास को सही करें, इंशाल्लाह अपने सतर को छुपाएं, अल्लाह पाक हम खुद गुनहगार न बने, लोगों को गुनहगार न बनाए, जितने लोग देखेंगे सब गुनहगार होंगे और सबका गुनाह हमारे ऊपर आएगा। अल्लाह पाक हम सबकी हिफाजत फरमाए। कुछ औरतें हैं वो
बैठना चाहते इंग्लिश बोलो इंग्लिश चलो तो जो बैठ होना चाहे वो बैठ हो जाए। बैठ होने का जिक्र कुरान करीम में है, सूरह मुमतहिना की आखिरी दो आयत में अल्लाह बयान फरमाते हैं कि ए मेरे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, औरतें अगर तुम्हारे पास बैठ होने के लिए आए तो उनको ये कलिमात बुलवाएं। सो टेल देम दीज आर वर्ड्स व्हिच इज मेंशन अल्लाह ताला हिमसेल्फ इन द कुरान करीम। मालूम होता है बैत का जिक्र कुरान करीम में है और हमारे अकाबरीन बैत करते थे। बैत की तीन किस्में हैं, बैत अल इस्लाम, इस्लाम में आने के बाद इस्लाम से वापस काफिर नहीं बनना है, एक बैत। बैत अल मारका, बैतल में जाने की बैत, कि हम जाएंगे लड़ने के लिए, मुसलमान वापस भागेंगे नहीं। और तीसरे बैत अल इस्तकामत दीन, कि जिसने अमाल है, द एक्शंस द अमाल्स ऑफ इस्लाम, वी आर मेकिंग बैत ऑन दैट अमाल। आजकल जो बैत की जाती है वो नंबर थर्ड वन है, जिस पर है कि हम कोशिश करेंगे कि हम रोजा रखेंगे, नमाज पढ़ेंगे, जकात देंगे, हज पढ़ेंगे अगर नहीं पढ़िए तो, और इसी तरह तौबा करते हैं, कुफर से शिर्क से हम बुरा काम नहीं करेंगे वगैरह वगैरह। ये है बैत अल अमाल इंशाल्लाह। तो दोज़ हु वांट टू बिकम बैत दे कैन रिपीट द वर्ड आफ्टर मी, बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम, आमनतु बिल्लाहि व मलाइकतिहि व कुतुबिहि व रुसुलिहि वल यौमिल आखिरि वल कद्रि खैरिहि व शर्रिहि मिनल्लाहि तआला। आई बिलीव इन अल्लाह, आई बिलीव इन ऑल द एंजल, आई बिलीव इन ऑल द डिवाइन बुक्स, I believe in all messengers. I believe in the last day, meaning on the day of Qiyamah. I believe in Qiyamah. I believe in Taqdeer. Good and bad. Everything from Allah. I am promising, I am going to perform my 5-time daily salah. If month of Ramadan comes, I will keep my roza, I will fast. If Allah give me wealth, I will pay my zakat and I will perform my Hajj, Farz Hajj. I am repenting today. I am making Tawbah today from Kufr, from disbelief, from Shirk, scribing partner with Allah, anyone, from adultery, from stealing, from backbiting, from all major sins, from all major sins, from all major sins. Allah accept my Tawbah, Allah accept my Tawbah, Allah accept my Tawbah. I am becoming bait on the hand of Siraj in 4 silsila: Chishtiya, Qadriya, Saharwardiya, Naqshbandiya. Ya Allah, keep me firm on bayat. وصلى الله تعالى على سيدنا محمد وآله وصحبه أجمعين. إن شاء الله. The permission is given of Zikrullah, which is we got from our Shaykh and Shaykh, Alhamdulillah, from me to Nabi Akram Sallallahu Alaihi Wasallam, in between there's 39 Shuyukh there. And we received the Zikr Ijazat, permission of Zikr. So,
normally 1200 tasbih, 200 time la ilaha illallah, 200 time la ilaha illallah, 400 time illallah, 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 and 500 time Allahu Allah, Allahu Allah, if you can manage, if you can make it. Otherwise, slowly, slowly start from 50 time la ilaha illallah, 50 time illallah, 50 time Allah Allah. Slowly, slowly you can build up, inshallah, you will see the barakat and benefits of the zikrullah in your life, inshallah. Now, wherever you, inshallah, we always going to make dua for all the murid and muridas. Or we always make dua for them. May Allah tabarak wa ta'ala give us the firmness on the bayat, inshallah. Rabbana taqabbal Allahumma laka alhamdu kama anta ahlu. Wa salli ala sayyidina Muhammadin kama anta ahlu. Wa fabbina ma anta ahlu. فإنك أنت أهل التقوى وأهل المغفرة يا أرحم الراحمين يا ذا الجلال والإكرام اللهم سبك گناہوں کو معاف فرما اللہ ہماری پریشانیوں کو دور فرما اللہ ہماری مشکلوں کو آسان فرما یا اللہ حاسدین کے حسد سے اے اللہ دشمنوں کی دشمناوت سے اللہ ہم سب کی حفاظت فرما جان مال آبرو عزت ایمان کی حفاظت فرما یا اللہ ہمارے گھروں کی حفاظت فرما ہماری اولادوں کی حفاظت فرما یا اللہ ہمارے ایمان کی حفاظت فرما الہ العالمین ہماری ہمیں صحت کاملہ نصیب فرما صحت کاملہ نصیب فرما بیماریوں سے پریشانیوں سے مشکلات سے اللہ ہماری حفاظت فرما یا اللہ نظر بد سے ہماری حفاظت فرما الہ العالمین گھروں میں روزی میں برکت نصیب فرما اللہ ہمارے اے اللہ گھروں میں برکت نصیب فرما اولادوں کو آنکھوں کی ٹھنڈک بنا یا اللہ جن لوگوں نے بیعت کی ہے اے اللہ ان کو اسلام پر استقامت نصیب فرما اسلام پر استقامت نصیب فرما یا اللہ اپنے فضل و کرم سے اپنے رحم و کرم سے الہ العالمین جہاں جہاں ہم سے بیعت ہونے والے ہیں نیشنل اور انٹرنیشنل یا اللہ سب کی مغفرت فرما سب کو عافیت نصیب فرما سب کو سکون نصیب فرما یا اللہ ہماری اولادوں کو نیک بنا اے اللہ ان مخلصین مخلصات کے آمین کے ساتھ ہماری آمین کو ملا کر ہماری دعا اور توبہ قبول فرما صلی اللہ تعالی علیہ سیدنا محمد وآلہ وسلم اجمعین برحمتک یا